महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला ओएट। भूमिका व्यक्तित्व का परिष्कार ही प्रतिभा परिष्कार है। धातुओं की खदानें जहां भी होती हैं, उस क्षेत्र के वही धातु कण मिट्टी में दबे होते हुए भी उसी दिशा में रेंगते और खदान के चुंबकीय आकर्षणों से आकर्षित होकर पूर्व संचित खदान का भार, कलेवर और गौरव बढ़ाने लगते हैं। व्यक्तित्ववान अनेकों का स्नेह, सहयोग, परामर्श एवं उपयोगी सान्निध्य प्राप्त करते चले जाते हैं। यह निजी पुरुषार्थ है। अन्य सुविधा साधन तो दूसरों की अनुकंपा भी उपलब्ध करा सकता है, किंतु प्रतिभा का परिष्कार करने में अपना संकल्प, अपना समय और अपना पुरुषार्थ ही काम आता है। इस पौरुष में कोताही न करने के लिए गीताकार ने अनेक प्रसंगों पर विचारशीलों को प्रोत्साहित किया है। एक स्थान पर कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और स्वयं ही अपना मित्र है, इसलिए अपने को उठाओ, गिराओ मत। अनुक्रमणिका 1. सर्वोपरि उपलब्धि प्रतिभा 2. प्रतिभा से बढ़कर और कोई समर्थता है नहीं 3. परिष्कृत प्रतिभा 1. दैवी अनुदान वरदान 4. प्रचंड मनोबल की प्रतिभा में परिणति 5. आगे बढ़ें और लक्ष्य तक पहुंचें। सर्वोपरि उपलब्धि प्रतिभा। मनुष्य ने सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में वरिष्ठता पाई है। शरीर संरचना और मानसिक मस्तिष्क की विलक्षणता के कारण उसने सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में न केवल स्वयं को सशक्त समुन्नत सिद्ध किया है, वरन वह ऐसी संभावनाएं भी साथ लेकर आया है जिनके सहारे अपने समुदाय को, अपने समग्र वातावरण एवं भविष्य को भी शानदार बना सके। यह विशेषता प्रयत्न पूर्वक उभारी जाती है। रास्ता चलते किसी गली कूचे में पड़ी नहीं मिल जाती। इस दिव्य विभूति को प्रतिभा कहते हैं। जो इसे अर्जित करते हैं वे सच्चे अर्थों में वरिष्ठ विशिष्ट कहलाने के अधिकारी बनते हैं, अन्यथा अन्यान्य प्राणी तो समुदाय में एक उथली स्थिति बनाए रहकर किसी प्रकार जीवन यापन करते हैं। मनुष्य गिलहरी की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, बंदर की तरह कुलाचे नहीं भर सकता, बैल जितनी भार वहन की क्षमता भी उसमें नहीं है, दौड़ने में वह चीते की तुलना तो क्या करेगा, खरगोश के पत्थर भी अपने को सिद्ध नहीं कर सकता, पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना उसके लिए संभव नहीं, न मछलियों की तरह पानी में डुबकी ही लगा सकता है। अनेक बातों में वह अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत पीछे है, किंतु विशिष्ट मात्रा में मिली चतुरता कुशलता के सहारे वह सभी को मात देता है और अपने को वरिष्ठ सिद्ध करता है। व्यावहारिक जीवन में मनुष्य अन्य प्राणी समुदाय की तुलना में अनेक दृष्टियों से कहीं आगे है, वह उसी की नियति है। अधिकांश मनुष्यों को अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक सुविधा संपन्न जीवन यापन करते हुए देखा जाता है। इतने पर भी संभावना यह भी है कि वह इन उपलब्धियों की तुलना में और भी अधिक समर्थता और महत्ता प्राप्त कर सके, पर शर्त एक ही है कि उस अभिवर्धन के लिए वह स्वयं अतिरिक्त प्रयास करे, कमियों को दूर करें और जिसकी नितांत आवश्यकता है उसे पाने कमाने के लिए अधिक जागरूकता पूर्वक, अधिक तत्परता एवं तन्मयता बरते, अपने पुरुषार्थ को इस स्तर पर सिद्ध करे कि यह मात्र दैवी अनुदानों के आधार पर ही समुन्नत बनकर नहीं रह रहा है, वरन उसका निज का पुरुषार्थ भी समुचित मात्रा में सम्मिलित रहा है। यह प्रतिभा ही है जिसके बल पर वह न्यायों की तुलना में अधिक सुसंस्कृत और समुन्नत बनता है। गोताखोर गहरी डुबकी लगाकर मोती बीनते हैं, हीरे खोजने वाले खदान का चप्पा चप्पा ढूंढ डालते हैं, प्रतिभा को उपलब्ध करने के लिए भी इससे कम प्रयास से काम नहीं चलता। प्रतिभा एक दैवी स्तर की विद्युत चेतना है जो मनुष्य के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में असाधारण स्तर की उत्कृष्टता भर देती है। उसी के आधार पर अतिरिक्त सफलताएं आश्चर्यजनक मात्रा में उपलब्ध की जाती है, साथ ही इतना और जुड़ता है कि अपने लिए असाधारण श्रेय सम्मान और दूसरों के लिए अभ्युदय के मार्ग पर घसीट ले चलने वाला मार्गदर्शन वह कर सके, मांझी की तरह अपनी नाव को खेकर स्वयं पार उतरे और उस पर बिठाकर अन्यों को भी पार उतारने का श्रेय प्राप्त कर सके, गिरों को उठाने, डूबतों को उबारने और किसी तरह समय गुजारने वालों को उत्कर्ष की ऊंचाई तक उछालने में समर्थ हो सके। प्रतिभाशाली लोगों को असाधारण कहते हैं, विशिष्ट और वरिष्ठ भी कहा जाता है। साधारण जनों को तो जिंदगी के दिन पूरे करने में ही जो दौड़ धूप करनी पड़ती है, झंझटों से निपटना और जीवनयापन के साधन जुटाना आवश्यक होता है, उसे ही किसी प्रकार पूरा कर पाते हैं। पशु पक्षियों और पतंगों से भी इतना ही पुरुषार्थ हो पाता है और इतना ही सुयोग जुट पाता है, किंतु प्रतिभावानों की बात ही दूसरी है। वे तारागणों के बीच चंद्रमा की तरह चमकते हैं, उनकी चांदनी सर्वत्र शांति और शीतलता बिखेरती है, वह स्वयं सुंदर और अपनी छत्र छाया के संपर्क में आने वालों को शोभा सुंदरता से जगमगा देते हैं। प्रतिभावानों को उदीयमान सूर्य भी कह सकते हैं, जिसके दर्शन होते ही सर्वत्र चेतना का एक नया माहौल उमड़ पड़ता है। वे ऊर्जा और आभा के स्वयं तो उद्गम होते ही हैं, अपनी किरणों का प्रभाव जहां तक पहुंचा पाते हैं वहां भी बहुत कुछ उभारते बिखेरते रहते हैं। सच तो यह है कि नर वानर को शक्तिपुंज बनाने का श्रेय प्रतिभा को ही है। प्रतिभा ही शरीर में ओजस्विता, मानस में तेजस्विता और अंत करण में विभूति भरी वर्चस्विता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मनुष्य की अपनी निजी विशेषता का परम पुरुषार्थ यही है। जो इससे वंचित रह गया, उसे मार्ग ढूंढने का अवसर नहीं मिलता। मात्र अंधी भेड़ों की तरह जिस तिस के पीछे चलकर जहां भाग्य ले पहुंचाता है, वहां जाकर ऐसा व्यक्ति अशक्त परावलंबियों जैसा जीवन जीता है। कठिनाइयों के समय यह मात्र घुटन अनुभव करता और आंसू भर बहाकर रह जाता है। संसार असंख्य पिछड़े लोगों से भरा पड़ा है। वे गई गुजरी जिंदगी जीते और भूखे नंगे तिरस्कृत उपेक्षित रहकर किसी प्रकार मौत के दिन पूरे करते हैं। निजी समर्थता का अभाव देखकर उन पर विपन्नता और प्रतिगामिता के अनेक उद्भिद चढ़ दौड़ते हैं। दुर्व्यसन दुर्बल मनोभूमि वालों पर ही सवार होते हैं और उन्हें जिधर तिधर खींचते घसीटते फिरते हैं। ऐसे भारभूत लोग अपने लिए, साथी सहयोगियों के लिए और समूचे समाज के लिए एक समस्या ही बने रहते हैं। इन्हीं का बाहुल्य देखकर अनाचारी अपने पंजे फैलाते, दांत गड़ाते और शिंजे कसते हैं। प्रतिभारहित समुदाय का धरती पर लदे भार जैसा आकलन ही होता है। वे किसी की कुछ सहायता तो क्या कर सकेंगे, अपने को अर्धमृतक की तरह किन्हीं के कंधों पर लादकर चलने का आश्रय ताकते हैं। संसार सदा से ऐसा नहीं था जैसा कि अब सुंदर, सुसज्जित, सुसंस्कृत और समुन्नत दिखता है। आदिकाल का मनुष्य भी वनमानुषों की तरह भूखा नंगा फिरता था। ऋतु प्रभावों से मुश्किल से ही जूझ पाता था। जीवित रहना और पेट भरना ही उसके लिए प्रधान समस्या थी और इतना बन पड़ने पर वह चैन की सांस भी लेता था। संसार तब इतना सुंदर कहाँ था। यहाँ खाई खंदक टीले, ऊसर, बंजर, निविड़ वन और अंगड़ जीव जंतु ही जहाँ तहाँ दिख पड़ते थे। आहार, जल और निवास तक की सुविधा न थी, फिर अन्य साधनों का उत्पादन और उपयोग बन पड़ने की बात ही कहाँ बन पाती होगी। आज का हाट बाजारों, उद्योग व्यवसायों, विज्ञान आविष्कारों, सुविधा साधनों, अस्त्र शस्त्र सज्जा, शोभा, शिक्षा और संपदा से भरा पूरा संसार अपने आप ही नहीं बन गया है। उसने मनुष्य की प्रतिभा विकसित होने के साथ साथ ही अपने कलेवर का विस्तार भी किया है। श्रेय मनुष्य को दिया जाता है, पर वस्तुतः दुनिया जानती है कि वहां सब कुछ संपदा और बुद्धिमत्ता का ही खेल है। इससे दो कदम आगे और बढ़ाया जा सके तो सर्वतोमुखी प्रगति का आधार एक ही दीख पड़ता है, प्रतिभा, परिष्कृत प्रतिभा। इसके अभाव में अस्तित्व जीवित लाश से बढ़कर और कुछ नहीं रह जाता। संपदा का इन दिनों बहुत महत्व आंका जाता है, इसके बाद समर्थता, बुद्धिमत्ता आदि की गणना होती है। पर और भी ऊंचाई की ओर नजर दौड़ाई जाए तो दार्शनिक, शासक, कलाकार, वैज्ञानिक, निर्माता एवं जागरूक लोगों में मात्र परिष्कृत प्रतिभा का ही चमत्कार दिखता है। साहसिकता उसी का नाम है। दूरदर्शिता, विवेकशीलता के रूप में उसे जाना जा सकता है। यदि किसी को वरिष्ठता या विशिष्टता का श्रेय मिल रहा हो तो समझना चाहिए कि यह उसकी विकसित प्रतिभा का ही चमत्कार है। इसी का अर्जन सच्चे अर्थों में वह वैभव समझा जाता है जिसे पाकर गर्व और गौरव का अनुभव किया जाता है। व्यक्ति याचक न रहकर दानवीर बन जाता है। यही है वह क्षमता जो अस्त्र शस्त्रों की रणनीति का निर्माण करती है और बड़े से बड़े बलिष्ठों को भी धराशायी कर देती है। शक्ति की सर्वत्र अभ्यर्थना होती है, पर यदि उसका बहुमूल्य अंश खोजा जाए तो उसे प्रतिभा के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। विज्ञान उसी का अनुयायी है, संपदा उसी की चेरी है, श्रेय और सम्मान वही जहां तहां से अपने साथ रहने के लिए घसीट लाती है, गौरव गाथा उन्हीं की गाई जाती है। अनुकरणीय और अभिनंदनीय इसी विभूति के धनी लोगों में से कुछ होते हैं। दूरदर्शिता, साहसिकता और नीति निष्ठा का समन्वय प्रतिभा के रूप में परिलक्षित होता है। ओजस, तेजस और वर्चस उसी के नाम है। दूध गर्म करने पर मलाई ऊपर तैरकर आ जाती है। जीवन के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रसंगों से निपटने का जब कभी अवसर आता है तो प्रतिभा ही प्रधान सहयोगी की भूमिका निभाती देखी जा सकती है। सफलताओं में, उपलब्धियों में अनेकों विशेषताओं के योगदान की गणना होती है, पर यदि उन्हें एकत्रित करके एक ही शब्द में केंद्रित किया जाए तो प्रतिभा कहने भर से काम चल जाएगा और भी खुलासा करना हो तो उसे अपने को, दूसरों को, संसार को और वातावरण को प्रभावित करने वाली सजीव शक्ति वर्षा भी कह सकते हैं। अन्यान्य उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है। उन्हें पाने वाले गौरवान्वित भी होते हैं और दूसरों को चमत्कृत भी करते हैं, पर स्मरण रखने की बात यह है कि यदि परिष्कृत प्रतिभा का अभाव हो तो प्रायः उनका दुरुपयोग ही बन पड़ता है। दुरुपयोग से अमृत भी विष बन जाने की उक्ति अप्रासंगिक नहीं है। शरीर बल से संपन्नों को आताए, आतंकवादी, अनाचारी, आक्रमणकारी, अपराधी के रूप में उस उपलब्धि का दुरुपयोग करते और अपने समेत अन्यों को संकट में धकेलते देखा जाता है। संपदा अर्जित करने वाले उसका सही उपयोग न बन पड़ने पर विलास, दुर्व्यसन, उद्धत अपव्यय, विग्रह खड़े करने वाले अहंकार प्रदर्शन आदि में खर्च करते देखे गए हैं। अवांछनीय व्यक्तियों और कार्यों का उसको सहयोग मिल जाने पर अनर्थ ही अनर्थ खड़े होते देखे जाते हैं। बढ़ी हुई शिक्षा या चतुरता एक से एक बड़े प्रण रचती है। ऐसे जाल जंजाल बुनती है जिनमें फंसने वालों को मछुआरों और चिड़ीमारों से पाला पड़ने जैसा भाग्य कोसना पड़ता है। बढ़ा हुआ सौंदर्य व्यभिचार का ही रास्ता पकड़ता है। बड़े साहब अफसर रिश्वतखोरी से खोटी कमाई से जिस प्रकार बड़े आदमी बनते हैं उसे देखकर यही सोचना पड़ता है कि यदि यह लोग शरीर श्रम भर से पेट भरने वाले श्रमिक रहे होते तो हजार गुना अच्छा था। प्रतिभा ही है जो वैभव को उपार्जित ही नहीं करती वरन उसके सदुपयोग भर के लिए उच्च स्तरीय सुझाव संकल्प और साहस भी प्रदान करती है। बड़प्पन भी तो इसी पर आश्रित है। प्रतिभा से बढ़कर और कोई समर्थता है नहीं। आदर्शवादी प्रयोजन सुनियोजन व्यवस्था और साहस भरी पुरुषार्थ परायणता को यदि मिला दिया जाए तो उस गुलदस्ते का नाम प्रतिभा दिए जाने में कोई अत्युक्ति न होगी। कहते हैं कि सत्य में हजार हाथी के बराबर बल होता है। सच्चाई तो इस कथन में भी हो सकती है पर यदि उसके साथ प्रतिभा भरी जागरूकता साहसिकता को भी जोड़ दिया जाए तो सोना और सुगंध के सम्मिश्रण जैसी बात बन सकती है। तब उसे हजार हाथियों की अपेक्षा लाख ऐरावतों जैसी शक्ति संपन्नता भी कहा जा सकता है। उसे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति संपन्नता एवं सौभाग्यशाली भी कही जा सकती है। आतंक का प्रदर्शन किसी भी भले बुरे काम के लिए दूसरों पर हावी होकर उनसे कुछ भी भला बुरा करा लेने के डाकुओं जैसे दुस्साहस का नाम प्रतिभा नहीं है। यदि ऐसा होता तो सभी आतंकवादी अपराधियों को प्रतिभावान कहा जाता जबकि उनका सीधा नाम दैत्य या दानव है। दादागिरी आक्रमण की व्यवसायिकता अपनी जगह काम करती तो देखी जाती है पर उसके द्वारा उत्पीड़ित किए गए लोग शाप ही देते रहते हैं। हर मन में उनके लिए अश्रद्धा ही नहीं घृणा और शत्रुता बनती है। भले ही प्रतिशोध के रूप में उसे कार्यान्वित करते न बन पड़े। शेर को सवासेर भी मिलता है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है भले ही उस क्रिया को किन्हीं मनुष्यों द्वारा संपन्न कर लिया जाए अथवा प्रकृति अपनी परंपरा के हिसाब से उठने वाले बबूले की हवा स्वयं निकाल दे। यदि प्रतिगामी प्रतिभावान समझे जाते तो अब तक यह दुनिया उन्हीं के पेट में समा गई होती और भलमनसाहत को चरितार्थ होने के लिए कहीं स्थान ही न मिलता। काया और छाया दोनों देखने में एक जैसी लग सकती है पर उनमें अंतर जमीन आसमान जैसा होता है। मूंछे मरोड़ने आंखें तरेरने और दर्प का प्रदर्शन करने वालों की कमी नहीं। ठगों और जालसाजों की करतूतें भी देखते ही बनती हैं। इतने पर भी उनका अंत कुकुरमुतों जैसी विडंबना के साथ ही होता है। यूं इन दिनों तथाकथित प्रगतिशील ऐसे ही अवांछनीय हथकंडे अपनाते देखे गए हैं पर उनका कार्य क्षेत्र विनाश ही बनकर रह जाता है। कोई महत्वपूर्ण सृजनात्मक उत्कृष्टता का पक्षधर प्रगतिशील कार्य उनसे नहीं बन पड़ता। यह विवेचना इसलिए की जा रही है कि जिनको बोलचाल की भाषा में प्रगतिशील कहा जाने लगा है उनकी वास्तविकता समझने में किसी को भ्रम न रह जाए कोई आतंक को प्रतिभा न समझ बैठे। वह तो उत्कृष्टता के साथ साहसिकता का नाम है। वह जहां भी होती है वहां कस्तूरी की तरह महकती है और चंदन की तरह समीपवर्ती वातावरण को प्रभावित करती है। गांधी जी के परामर्श एवं सान्निध्य से ऐसी प्रतिभाएं निखरी एकत्रित हुई एवं कार्य क्षेत्र में उतरी कि उस समुच्चय ने देश के वातावरण में शौर्य साहस के प्राण फूंक दिए। उनके द्वारा जो किया गया संजोया गया उसकी चर्चा चिरकाल तक होती रहेगी। देश की स्वतंत्रता जैसी उपलब्धि का श्रेय उसी परिकर को जाता है जिसे गांधी जी के व्यक्तित्व से उभरने का अवसर मिला। उनमें सचमुच जादुई शक्ति थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल भारत के वायसराय को परामर्श दिया करते थे कि वे गांधी जी से प्रत्यक्ष मिलने का अवसर न आने दें। उनके समीप पहुंचने से वह उनके जादुई प्रभाव में फंसकर उन्हीं का हो जाता है। बुद्ध को मार डालने का षड्यंत्र अंगुलिमाल महादस्यु ने बनाया। वह तलवार निकाले बुद्ध के पास पहुंचा और आक्रमण करने पर उतारू ही था कि सामने पहुंचते पहुंचते पानी पानी हो गया। तलवार फेंक दी और प्रायश्चित के रूप में न केवल उसने दस्यु व्यवसाय छोड़ा वरन बुद्ध का शिष्य बनकर शेष जीवन को धर्मधारणा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा ही कुचक रामपली नामक वेश्या रचकर लाई थी पर सामने पहुंचते पहुंचते उसका सारा बना बनाया जाल टूट गया। वह चरणों पर गिरकर बोली पिताजी मुझ नरक के कीड़े को किसी प्रकार पाप पंख से उबार दें। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा कि तू आज से सच्चे अर्थों में मेरी बेटी है। अपना ही नहीं मनुष्य जाति के उद्धार का कार्यक्रम मेरे वरदान के रूप में लेकर जा। सभी जानते हैं कि अम्पली के जीवन का उत्तरार्ध किस प्रकार लोकमंगल के लिए समर्पित हुआ। नारद कहीं अधिक देर नहीं ठहरते थे पर उनके थोड़े से संपर्क एवं परामर्श से ध्रुव प्रहलाद रत्नाकर आदि कितनों को ही कितनी ऊंचाई तक चढ़ दौड़ने का अवसर मिला। वेदव्यास का साहित्य सृजन प्रख्यात है। उनकी सहायता करने गणेश जी लिपिक के रूप में दौड़े थे। भागीरथ का पारमार्थिक साहस धरती पर गंगा उतारने का था। कुछ अड़चन पड़ी तो शिवजी जटा बिखेर कर उनका सहयोग करने के लिए आ खड़े हुए। विश्वामित्र की आवश्यकता समझते हुए हरिश्चंद्र जैसो ने अपने को निछावर कर दिया। माता गायत्री का सहयोग उस महर्षि को जीवन भर मिलता रहा। प्रसिद्ध है कि तपस्विनी अनुसुईया की आज्ञा पालते हुए तीनों देवता उनके आंगन में बालक बनकर खेलते रहने का सौभाग्य लाभ लेते रहे। जापान के गांधी कागावा ने उस देश के पिछड़े समुदाय को सभ्य एवं समर्थों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। महामना मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद, योगी अरविंद, राजा महेंद्र प्रताप, रविन्द्रनाथ टैगोर की स्थापित शिक्षा संस्थाओं ने कितनी उच्च स्तरीय प्रतिभाएं विनिर्मित करके राष्ट्र को समर्पित की। इन घटनाक्रमों को भुलाया नहीं जा सकता। विवेकानंद, दयानंद आदि के द्वारा जो जन कल्याण बन पड़ा उसे असाधारण ही कहा जाएगा। प्रतिभाएं सदा ऐसे ही कार्यक्रम हाथ में लेती और उसे पूरी करती हैं। रियासतों को भारत गणतंत्र में मिलाया जाना था। कुछ राजा सहमत नहीं हो रहे थे और अपनी शक्ति का परिचय देते हुए तलवार हिला रहे थे। सरदार पटेल ने कड़क कर कहा, इस तलवार से तो मित्रों की झाड़ू अधिक सशक्त है, जो कुछ कर तो दिखाती है। राजाओं को पटेल के आगे समर्पण करना पड़ा है। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राजा छत्रशाल आदि के पराक्रम प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वल्प साधनों से जो लड़ाइयां लड़ी उन्हें असाधारण पराक्रम का प्रतीक ही माना जा सकता है। लक्ष्मीबाई ने तो महिलाओं की एक पूरी सेना खड़ी कर ली थी और समर्थ अंग्रेजों के छक्के ही छुड़ा दिए थे। चाणक्य की जीवनी जिन्होंने पढ़ी है वे जानते हैं कि परिस्थितियां एवं साधन नहीं वरन मनोबल के आधार पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। शंकर दिग्विजय की गाथा बताती है कि मानवी प्रतिभा कितने साधन जुटा सकती और कितने बड़े काम करा सकती है। परशुराम ने समूचे विश्व के आत्ताइयों का मानस किस प्रकार उलट दिया था यह किसी से छिपा नहीं है। कुमारजीव ने एशिया के एक बड़े भाग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत लेकर कुछ ही समय में धार्मिक क्षेत्र की महाक्रांति कर दिखाई थी। नेपोलियन भयंकर युद्ध में फंसा था, साथ में एक साथी था, सामने से गोली चल रही थी। घबराने लगा तो नेपोलियन ने कहा, डरो मत, वह गोली अभी किसी फैक्ट्री में ढली नहीं है जो मेरा सीना चीरे। वह उसी संकट में घिरा होने पर भी दंडनाता चला गया और एक ही हुंकार में समूची शत्रुसेना को अपना सहायक एवं अनुयायी बना लिया। प्रतिभा ऐसी ही होती है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, इटली के गैरिबाल्डी आदि की गाथाएं भी ऐसी हैं कि वे गई गुजरी परिस्थितियों का सामना करते हुए जनमानस पर छाए और राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में सफल हुए। लेनिन के बारे में जो जानते हैं उन्हें विदित है कि साम्यवाद के सूत्रधार के रूप में उसने क्या से क्या करके दिखा दिया। विनोबा का भूदान आंदोलन, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति सहज ही भुलाई नहीं जा सकती। भामाशाह की उदारता देश के कितने काम आई। बाबा साहब आमटे द्वारा की गई पिछड़ों की सेवा एक जीवंत आदर्श के रूप में अभी भी विद्यमान है। विश्वव्यापी स्काउट आंदोलन को खड़ा करने वाले वेडन पावेल की सृजनात्मक प्रतिभा को किस प्रकार कोई विस्मृत कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना अविस्मरणीय है। भारतीय साहित्यकारों के उत्थान की गाथाओं में कुछ के संस्मरण बड़े प्रेरणाप्रद हैं। पुस्तकों का बक्सा सिर पर रखकर फेरी लगाने वाले भगवती प्रसाद वाजपेयी, भिक्षान से पले बालकृष्ण शर्मा, नवीन भैंस चराने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी आदि घोर विपन्नताओं से ऊंचे उठकर मूर्धन्य साहित्यकार बने थे। शहर के कूड़ों में से चिथड़े बटोरकर गुजारा करने वाले गो की विश्वविख्यात साहित्यकार हो चुके हैं। यह सब प्रतिभा का ही चमत्कार है। उन्नति के अनेक क्षेत्र हैं, पर उनमें से अधिकांश में उठना प्रतिभा के सहारे ही होता है। धनाध्यक्षों में हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, अल्फ्रेड नोबल, टाटा, बिरला आदि के नाम प्रख्यात हैं। इनमें से अधिकांश आरंभिक दिनों में साधन रहित स्थिति में ही रहे हैं। पीछे उनके उठने में सूझबूझ ही प्रधान रूप से सहायक रही है। कठोर श्रमशीलता, एकाग्रता एवं लक्ष्य के प्रति सघन तत्परता ही सच्चे अर्थों में सहायक सिद्ध हुई है। अन्यथा किसी को यदि अनायास ही भाग्यवश या पैतृक संपत्ति के रूप में कुछ मिल जाए तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसे सुरक्षित रखा जा सकेगा या बढ़ने की दिशा में अग्रसर होने का अवसर मिल ही जाएगा। व्यक्ति की अपनी निजी विशिष्टताएं हैं जो कठिनाइयों से उबरने, साधनों को जुटाने, मैत्री स्तर का सहयोगी बनाने में सहायता करती हैं। इन्हीं सब सद्गुणों का समुच्चय मिलकर ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व विनिर्मित करता है जिसे प्रतिभा कहा जा सके, जिसे जहां भी प्रयुक्त किया जाए वहां अभ्युदय का श्रेय सुयोग का अवसर मिल सके। प्रतिभा के संपादन में, अभिवर्धन में जिसकी भी अभिरुचि बढ़ती रही है, जिसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुविकसित बनाने के लिए प्रयत्नरत रहने में अपनी विशिष्टता की सार्थकता समझा है, समझना चाहिए उसी को अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने का अवसर मिला है। उसी को जन साधारण का स्नेह सहयोग मिला है। संसार भर में जहां भी खरे स्तर की प्रगति दृष्टिगोचर हो, समझना चाहिए कि उसमें समुचित प्रतिभा का ही प्रमुख योगदान रहा है। परिष्कृत प्रतिभा, एक दैवीय अनुदान वरदान। सैनिकों को युद्ध मोर्चों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार कराने के लिए उन्हें भेजने वाला तंत्र यह व्यवस्था भी करता है कि उन्हें आवश्यक सुविधाओं वाली साज सज्जा मिल सके, अन्यथा वे अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार पूरी करने में असमर्थ रहेंगे। नव सृजन के दोहरे मोर्चे पर इसी प्रकार की व्यवस्था युग परिवर्तन का सरंजाम जुटाने वाली सत्ता ने भी कर रखी है। सफलता के उच्च लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी ही बाधाएं पड़ सकती हैं, उन्हें पार करने के लिए वांछित प्रगति के लिए अनेक आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। समझना चाहिए कि इस संदर्भ में किसी अग्रगामी आदर्शवादी को निराश न होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पीठ पर सर्वशक्तिमान सत्ता का हाथ जो रहेगा। तेज हवा पीछे से चलती है तो पैदल वालों से लेकर साइकिल आदि के सहारे लोग कम परिश्रम में आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल सरल हो जाती है। इसी प्रकार नव सृजन का लक्ष्य कल्पना करने वालों को कठिन दिखता तो है, पर उस सृष्टा को विदित है कि उनकी नव सृजन योजना को पूरा करने के लिए जो अपने प्राण हथेली पर रखकर अग्रगमन का साहस दिखा रहे हैं, उन्हें सफलता का लक्ष्य प्रदान करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं जुटानी और क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मांगने वाले भिखमंगे दरवाजे दरवाजे पर झोली पिसारते, दांत निपोड़ते, गिड़गिड़ाते और दुत्कारे जाते हैं। मनोकामनाएं पूरी कराने वाले ईश्वर भक्ति का आडंबर उड़कर इसी प्रकार निराश रहते हैं और उपेक्षा सहते हैं, पर जिन्हें ईश्वर का काम करना पड़ता है उन्हें तो आदरपूर्वक बुलाया जाता है और अभीष्ट साधनों का उपहार भी दिया जाता है। इन दिनों गर्ज ईश्वर को पड़ी है, उसी का उद्यान समुन्नत करने के लिए कुशल माली चाहिए, उसी की दुनिया को समुन्नत, सुसंस्कृत, सुसंपन्न बनाने के लिए कुशल कलाकारों और शूरवीर सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है। जो उसकी पुकार पर अपनी क्षमता को प्रस्तुत करेंगे वे दैवीय अनुग्रह से किसी प्रकार वंचित न रहेंगे, वरन इतना कुछ प्राप्त करेंगे जिसे पाकर वे निहाल बन सकें। हनुमान सुग्रीव के सुरक्षा कर्मचारी थे। भयभीत सुग्रीव के लिए दो वन आगंतुकों का भेद लेने के लिए वे वेश बदलकर राम लक्ष्मण के पास गए थे और सिर नवाकर विनम्रतापूर्वक पूछताछ कर रहे थे। पर बाद में स्थिति बदली, सीता की खोज के लिए राम को हनुमान की जरूरत पड़ी। अनुरोध उन्होंने स्वीकारा तो बदले में इतनी सामर्थ्य के धनी बन गए जो उनकी मौलिक विशेषताओं में सम्मिलित नहीं थी। समुद्र छलांगने, लंका को जलाने, पर्वत उखाड़कर लाने जैसे असाधारण काम थे जो उन्होंने अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके संपन्न किए। ईश्वर के लिए आड़े समय में काम आने वाले को भी ऐसे ही उपहार अनुदान मिलते हैं। विभीषण को लंका का सम्राट बनने का सुयोग मिला। सुग्रीव ने अपना खोया राज्य पाया। भगवान के काम के लिए देवपुत्र मांगने वाली कुंती को उत्कृष्ट स्तर के पुत्र रत्न देने में उन्होंने आनाकानी नहीं की। भक्ति का प्रचार करने वाले नारद देवर्षि कहलाए। सूर तुलसी ने ईश्वर के काम के लिए प्रतिज्ञारत होकर ऐसी प्रतिभा पाई जिसके सहारे वे अनंत कीर्ति पा सकने के अधिकारी बने। इन दिनों सृष्टा ने ही विश्व कल्याण के लिए, नवसृजन के लिए कर्मवीरों को पुकारा है। जो उस हेतु हाथ बढ़ाएंगे वे खाली क्यों रहेंगे। भागीरथ, गांधी, बुद्ध आदि को जो समर्थता मिली वह इसलिए मिली कि परमार्थ प्रयोजन के काम आए। इस दुनिया में ऐसी भी सुविधा है कि जब तक बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बिना मूल्य भी मिल जाती हैं। हवा, पानी, छाया, खुशबू आदि हम बिना मूल्य ही पाते हैं, पर जौहरी या हलवाई की दुकान पर सुसज्जित रखी हुई वस्तुएं उठाकर चल देने का कोई नियम नहीं है, उनका मूल्य चुकाना पड़ता है। गाय को घास न खिलाई जाए तो दूध प्राप्त करते रहना कठिन है। भगवान ने सुदामा को अपनी द्वारिकापुरी, टूटी सुदामापुरी के स्थान पर स्थानांतरित कर दी थी, पर इससे पहले यह विश्वास कर लिया था कि इस अनुदान को उस स्थान पर कारगर विश्वविद्यालय चलाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाएगा। चाणक्य की शक्ति चंद्रगुप्त को ही मिली थी और वह चक्रवर्ती कहलाया था। भवानी की अक्षय तलवार शिवाजी को मिली थी। अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष एवं बाण देने वालों ने अनुदान थमा देने से पहले यह भी जांच लिया था कि उस समर्थता को किस काम में प्रयुक्त किया जाएगा। यदि बिना जांच पड़ताल के किसी को कुछ भी दे दिया जाए तो भस्मासुर द्वारा शिवजी को जिस प्रकार हैरान किया गया था वैसी ही हैरानी अन्यों को भी उठानी पड़ सकती है। भगवान ने काय कलेवर तो आरंभ से ही बिना मूल्य दे दिया है, पर उसके बाद का दूसरा वरदान है परिष्कृत प्रतिभा। इसी के सहारे कोई महामानव स्तर का बड़प्पन उपलब्ध करता है। इतनी बहुमूल्य संपदा प्राप्त करने के लिए वैसा ही साहस एकत्रित करना पड़ेगा जैसा कि लोकमंगल के लिए विवेकानंद जैसों को अपनाना पड़ा था। इन दिनों परीक्षा भरी वेला है जिसमें सिद्ध करना होगा कि जो कुछ दैवीय अनुग्रह विशेष रूप से उपलब्ध होगा उसे उच्च स्तरीय प्रयोजन में ही प्रयुक्त किया जाएगा। कहना न होगा कि इन दिनों नवयुग के अवतरण का पथ प्रशस्त करना ही वह बड़ा काम है जिसके लिए कटिबद्ध होने पर परिष्कृत प्रतिभा का बड़ी मात्रा में अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। उसे धारण करने पर हीरे का हार पहनने वाले की तरह शोभायमान बना जा सकता है। ईश्वरीय व्यवस्था में यही निर्धारण है कि बोया जाए और उसके बाद काटा जाए। पहले काट लें, उसके बाद बोएं, यही नहीं हो सकता। लोक सेवी उज्ज्वल छवि वाले लोग ही प्रायः वरिष्ठ विश्वस्त गिने और उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विशिष्ट पुरुषार्थ का परिचय देने के उपरांत ही पुरस्कार मिलते हैं। परिष्कृत प्रतिभा ऐसी संपदा है जिसकी तुलना में मनुष्य को गौरवान्वित करने वाला और कोई साधन है नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि मानवीय गरिमा को गौरवान्वित करने वाली धर्म धारणा के क्षेत्र में कितनी उदारता और कितनी सेवा साधना का परिचय देने का साहस जुटा पाया। दूसरों के हाथ रचाने के लिए मेहंदी के पत्ते पीसने पर अपने हाथ स्वयमेव लाल हो जाते हैं। समय की मांग के अनुरूप पुण्य परमार्थ का परिचय देने वालों को भी सदा नफे में ही रहने का सुयोग मिलता है। बाजरा मक्का आदि का बोया हुआ एक दाना हजार दाने से लदी बाल बनकर इस तथ्य को प्रमाणित और परिपुष्ट करता है। भगवान के बैंक में जमा की हुई पूंजी इतने अधिक ब्याज समेत वापस लौटती है जितना लाभ अन्य किसी व्यवसाय या पूंजी निवेश में कदाचित ही हस्तगत होती हो। किसी की वरिष्ठता उसके पारमार्थिक पौरुष के आधार पर ही आंकी जाती है। श्रेष्ठों वरिष्ठों का आकलन इसी एक आधार पर होता रहा है। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता है कि बड़े कामों को संपन्न करने में उन्हीं की मनस्विता काम आती है। पटरी पर से उतरे इंजन को उठाकर फिर उसी स्थान पर रखने के लिए मजबूत और बड़ी क्रेन चाहिए। उफनती नदी में जब भंवर पड़ते रहते हैं तब बलिष्ठ नाविकों के लिए ही यह संभव होता है कि वे डगमगाती नाव को खेकर पार पहुंचाएं। समाज की सुविस्तृत संसार की उलझन भरी बड़ी समस्याओं को सही तरह सुलझा सकना उन साहसी और मेधावी जनों से ही बन पड़ता है जिन्हें दूसरे शब्दों में प्रतिभावान भी कहा जा सकता है। युग परिवर्तन जैसे महान प्रयोजनों को हाथ में लेने के लिए अपनी साहसिकता का गौरव भरी गरिमा का परिचय दे सकने वाले व्यक्ति चाहिए। आड़े समय में ऐसे ही प्रखर प्रतिभावानों को खोजा उभारा और खरादा जाना है। एक संभावना यह है कि संचित अनाचारों का विस्फोट इन्हीं दिनों हो सकता है। उसे रोका न गया तो कोई महायुद्ध भड़क सकता है। बढ़ता हुआ प्रदूषण भयावह बहुप्रजनन बढ़ता हुआ अनाचार मिलजुलकर महाप्रलय या खंड प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उसे रोकने के लिए सशक्त अवरोध चाहिए। ऐसा अवरोध जो उफनती हुई नदियों पर बांध बनाकर उस जल संचय को नहरों द्वारा खेत खेत तक पहुंचा सके। वह साधारणों का नहीं असाधारणों का काम है। ताजमहल मिस्र के पिरामिड चीन की दीवार पीसा की मीनार स्वेज और पनामा नहर हॉलैंड द्वारा समुद्र को पीछे धकेलकर उस स्थान पर सुरम्य औद्योगिक नगर बसा लेने जैसे अद्भुत सृजन कार्य जहां तहां विनिर्मित हुए दीख पड़ते हैं वे आरंभ में किन्हीं एकाद संकल्पवानों के ही मनमानस में उभरे थे। बाद में सहयोगियों की मंडली जुड़ती गई और असीम साधनों की व्यवस्था बनती चली गई। नवयुग का अवतरण भी इन सब में बड़ा चढ़ा कार्य है क्योंकि उसके साथ संसार के समूचे धरातल का जन समुदाय का संबंध किसी न किसी प्रकार जुड़ता है। इतने बड़े परिवर्तन एवं प्रयास के लिए अग्रदूत कौन बने अग्रिम पंक्ति में खड़ा कौन हो आवश्यक क्षमता और संपदा कौन जुटाए। निश्चय ही यह नियोजन असाधारण एवं अभूतपूर्व है। इसे बिना मनस्वी साथी सहयोगियों के संपन्न नहीं किया जा सकता। विचारणीय है कि उतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बने। आरंभिक दृष्टि से यह कार्य लगभग असंभव जैसा लगता है पर संसार में ऐसे लोग भी हुए हैं जिसने असंभव को संभव बनाया है। आल्पस पहाड़ को लांघने की योजना बनाने वाले नेपोलियन से हर किसी ने यह कहा था कि जो कार्य सृष्टि में आदि से लेकर अब तक कोई नहीं कर सका उसे आप कैसे कर लेंगे। उत्तर बड़ा शानदार था। असंभव शब्द मूर्खों के कोश में लिखा मिलता है। यदि आल्पस ने राह ना दी तो उसे इन्हीं पैरों के नीचे रौंद कर रख दिया जाएगा। अमेरिका की खोज पर निकले कोलंबस को भी लगभग ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ा। समुद्र से अंडे वापस लेने में असफल होने पर जब टिटहरी ने अपनी चोंच में बालू भरकर समुद्र में डालने और उसे पाटकर समतल बनाने का संकल्प घोषित किया और उसके लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए उद्यत हो गई, तो नियति ने संकल्पवानों का साथ दिया। अगस्त्य मुनि आए, उन्होंने समुद्र पी डाला और टिटहरी को अंडे वापस मिल गए। फरहाद द्वारा पहाड़ काटकर 32 मील लंबी नहर निकालने का असंभव समझे जाने वाला कार्य संभव करके दिखाया गया। इसे ही कहते हैं प्रतिभा। प्रचंड मनोबल की प्रतिभा में परिणति। वह पौराणिक गाथा स्मरण रखने योग्य है कि सीता हरण के उपरांत जब रावण को परास्त करने का प्रश्न सामने आया तो राम के द्वारा भेजा गया निमंत्रण उन दिनों के राजाओं और संबंधियों तक ने अस्वीकृत कर दिया था, पर सुदृढ़ संकल्पों के अधूरे रहने से तो दिव्य व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगने की स्थिति आती है। वह भी तो अंगीकृत नहीं हो सकती। जिन खोजा तिन पाइया वाली उक्ति के अनुरूप खोज की गई तो रीच वानरों में से भी ऐसे मनस्वी निकल पड़े जो आदर्शों के निर्वाह में बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तत्परता दिखाने लगे। उनकी एक अच्छी खासी मंडली कार्य क्षेत्र में उतरने के लिए कटिबद्ध होकर आगे आ गई। बंदरों ने लकड़ी पत्थर एकत्रित किए, रीछू ने इंजीनियर की भूमिका निभाई और समुद्र पर सेतु बनकर खड़ा हो गया। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। प्रतिकूलताएं हटती और अनुकूलताएं जुटती चली गईं। लंका विजय और श्रीराम की अवध वापसी वाली कथा सर्वविदित है। सीता भी अनेक बंधनों से छुटकारा पाकर वापस आ गई। यहाँ दो निष्कर्ष निकलते हैं, एक यह कि राम की प्रतिभा पर विश्वास करके वरिष्ठ वानर भी उत्साह और साहस से भर गए थे, अथवा राम दल के मूर्धन्यों ने सामान्य स्तर के वानरों को भी प्राण चेतना से ओतप्रोत कर दिया हो और समर्थ व्यक्तियों की एक अच्छी खासी मंडली बन गई हो। दूसरी ओर समर्थ शासनाध्यक्ष भी रावण की असमर्थता और अपनी दुर्बलता को देखते हुए डर गए हों और झंझट में पड़ने से डरकर कन्नी काट गए हों। निष्कर्ष यही निकलता है कि परिष्कृत प्रतिभा दुर्बल सहयोगियों की सहायता से भी बड़े काम संपन्न कर लेती है, जबकि डरकर समर्थ व्यक्ति भी हाथ पैर फुला बैठते हैं। राणा प्रताप के सैनिकों में अधिकांश आदिवासियों का ही पिछड़ा समझा जाने वाला समुदाय प्रमुख था। लक्ष्मीबाई रानी ने घर के पिंजरे में बंद रहने वाली महिलाओं को भी प्रोत्साहन देकर युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिकों की तरहला खड़ा किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपने समय के दुर्दांत दस्यु सागर सिंह को लूटमार करके भागते समय केवल अपनी सहेली सुंदर के सहयोग से बंदी बनाकर दरबार में खड़ा कर दिया था। उनकी मनस्विता के समक्ष उसका सारा दुस्साहस ढह गया। रानी ने अंततः उसे अपना सहयोगी बनाकर उसकी प्रतिभा का उपयोग अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने में किया। साधारण लोगों की प्रतिभा उभारकर साहस के धनी लोगों ने बड़े बड़े काम करा लिए थे। चंद्रगुप्त बड़े साम्राज्य का दायित्व संभालने के योग्य अपने को पा नहीं रहा था, पर चाणक्य ने उसमें प्राण फूंके और अपने आदेशानुसार चलने के लिए विवश कर दिया। अर्जुन भी महाभारत की बागडोर संभालने में सकपका रहा था, पर कृष्ण ने उसे वैसा ही करने के लिए बाधित कर दिया जैसा कि वे चाहते थे। समर्थ गुरु रामदास की मनस्विता यदि उच्च स्तर की नहीं रही होती तो शिवाजी की परिस्थितियां गजब का पराक्रम करा सकने के लिए उद्यत न होने देती। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने विवेकानंद को एक साधारण विद्यार्थी से ऊंचा उठाकर विश्वभर में भारतीय संस्कृति का संदेशवाहक बना दिया। दयानंद की प्रगतिशीलता के पीछे विरजानंद के प्रोत्साहन ने कम योगदान नहीं दिया था। साथियों और मार्गदर्शकों की प्रतिभा जिस किसी पर अपना आवेश हस्तांतरित कर दे वही कुछ से कुछ बन जाता है। औजारों हथियारों को ठीक तरह काम करने के लिए उनकी धार तेज रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उन्हें पत्थर पर रगड़कर शान पर चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। पहलवान भी चाहे जब दंगल में जाकर कुश्ती नहीं पछाड़ लेते, इसके लिए उन्हें मुद्दतों अखाड़े में अभ्यास करना पड़ता है। प्रतिभा भी यकायक परिष्कृत स्तर की नहीं बन जाती, इसके लिए आए दिन अवांछनीयताओं से जूझना और सुसंस्कारी आदर्शवादिता के अभिवर्धन का प्रयास निरंतर जारी रखना पड़ता है। समाज सेवा के रूप में अन्यानियों के साथ यह प्रयत्न जारी रखा जा सकता है। समाज में ऐसे अवसर निरंतर नहीं मिलते। निजी जीवन और परिवार परिक का क्षेत्र ऐसा है जिसमें सुधार परिष्कार के लिए कोई न कोई कारण निरंतर विद्यमान रहते हैं। रोज घर में बुहारी लगाने की, नहाने कपड़े धोने की आवश्यकता पड़ती है। अपने गुण कर्म स्वभाव में कहीं न कहीं से मलिनता घुस पड़ती है, उनका निराकरण करना नित्य ही आवश्यक होता है। मन में स्वभाव में पूर्वसंचित कुसंस्कारों परिचितों के संपर्कों से मात्र नौचित्य ही पल्ले बढ़ता है। उसका निराकरण अपने आप से जूझे बिना समझाने से लेकर धमकाने तक का प्रयोग करने के अतिरिक्त स्वच्छता शालीनता बनाए बिना नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आदर्शों का परिपालन भी स्वभाव का अंग बनाना पड़ता है। इसके लिए दूसरों से तो यत्किंचित सहायता ही मिल पाती है। बच्चे अपने प्रयास से रेंगने और खड़े होने का प्रयत्न करते हैं तभी वे चलने और दौड़ने में समर्थ होते हैं। अपने आप को व्यक्तित्व के हर पक्ष को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर अवसर तलाशने और प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस अवसर पर आत्मनिरीक्षण आत्मसमीक्षा आत्मसुधार और आत्मविकास के लिए अपनी दिनचर्या में ही प्रगतिशीलता का अभ्यास करना होता है। इसी प्रकार शरीर से एक कदम आगे बढ़ते ही परिवार परिक को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने पर ही उनका भविष्य निखरता है। अस्तु उनके परिशोधन के लिए भी श्रमशीलता शिष्टता मितव्ययता सुव्यवस्था और सहकारिता की प्रवृत्तियों को उन सबके अभ्यास में उतारने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने पड़ते हैं। अन्यथा पर उपदेश कुशल बहुतेरे भर बन जाने से उपहास तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। अपनी योग्यता क्षमता बढ़ा लेने के उपरांत ही यह बन पड़ता है कि दूसरों पर इच्छित प्रभाव डाला जाए और उन्हें उठने बैठने में सक्षम बनाया जाए। रेल का इंजन स्वयं समर्थ होता है और साधनों से गति पकड़ता है, तभी उसके साथ जुड़े हुए पीछे वाले डिब्बे भी गति पकड़ते हैं। इंजन की क्षमता यदि अस्त व्यस्त हो चले तो फिर वह रेल लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर, अन्यों का आवागमन भी रोककर खड़ी हो जाएगी। दूसरों की सहायता मिलती तो है पर उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए असाधारण प्रयत्न करने पड़ते हैं। पात्रता ही प्रकारांतर से सफलता जैसे पुरस्कार साथ लेकर वापस लौटती है। वर्षा ऋतु कितने ही दिन क्यों न रहे, कितनी ही मूसलाधार वर्षा क्यों न बरसे, पर अपने पल्ले उतना ही पड़ेगा जितना कि बर्तन का आकार हो अथवा गड्ढे की गहराई बन सके। उन दिनों सब जगह हरियाली उगती है, पर चट्टानों पर एक तिनका भी नहीं उगता। उर्वरता न हो तो भूमि में कोई बीज उगेगा ही नहीं। छात्रों को अगली कक्षा में चढ़ने या पुरस्कार जीतने, छात्रवृत्ति पाने का अवसर किसी की कृपा से नहीं मिलता। उनकी परिश्रम पूर्वक बढ़ी हुई योग्यता ही काम आती है। प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत होने वाले जिस तिस का अनुग्रह मिलने की आशा नहीं लगाए रहते, वरन अपनी दक्षता समर्थता को विकसित करके बाजी जीतने वाले सफल व्यक्तियों की पंक्ति में जा बैठने की प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। देवताओं तक का अनुग्रह तपश्चर्या की प्रखरता अपनाने वाले ही उपलब्ध करते हैं। बिना प्रयास के तो थाली में रखा हुआ भोजन तक मुंह में प्रवेश करने और पेट तक पहुंचने में सफल नहीं होता। महान शक्तियों ने जिस पर भी अनुग्रह किया है उसे सर्वप्रथम उत्कृष्टता अपनाने और प्रबल पुरुषार्थ में जुटने की ही प्रेरणा दी है। इसके बाद ही उनकी सहायता काम आती है। कुपात्रों को यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि उन्हें अनायास ही मानवीय या दैवी सहायता उपलब्ध होगी और सफलताओं सिद्धियों विभूतियों से अलंकृत करके रख देगी। दुर्बलता धारण किए रहने पर तो प्रकृति भी देव भी दुर्बल का घातक होता है, इस उक्ति को चरितार्थ करती देखी गई है। दुर्बल शरीर पर ही विषाणुओं की अनेक प्रजातियां चढ़ दौड़ती हैं। शीत ऋतु का आगमन जहां सर्वसाधारण के स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक होता है, वहां मक्खी मच्छर जैसे कृमि कीटकों के समूह को मृत्यु के मुंह में धकेल देता है। सड़क पर बसों मोटरों का ढांचा दौड़ता दिखता है, पर जानकार जानते हैं कि यह दौड़ भीतर टंकी में भरे ज्वलनशील तेल की करामात है। यह चुप जाए तो बैठकर सफर करने वाली सवारियों को उतरकर उस ढांचे को अपने बाहुबल से धकेलकर आगे खिसकाना पड़ता है। मनुष्य के काय कलेवर के द्वारा जो अनेक चमत्कारी काम होते दिख पड़ते हैं, वे मात्र हाड़ मांस की उपलब्धि नहीं होते, वरन उछलती उमंगों के रूप में प्रतिभा ही काम करती है। स्वयंवर में माला उन्हीं के गले में पड़ती है जो दूसरों की तुलना में अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं। चुनावों में वे ही जीतते हैं जिनमें दक्षता प्रदर्शित करने और लोगों को अपने प्रभाव में लाने की योग्यता होती है। मजबूत कलाइयां ही हथियार का सफल प्रहार कर सकने में सफल होती हैं। दुर्बल भुजाएं तो हारने के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त कर सकने में सफल ही नहीं होती। भीष्म ने मृत्यु को धमकाया था कि जब तक उत्तरायण सूर्य न आवे तब तक इस ओर पैर न धरना। सावित्री ने यमराज के भैंसे की पूंछ पकड़कर उसे रोक लिया था और सत्यवान के प्राण वापस करने के लिए बाधित किया था। अर्जुन ने पैना तीर चलाकर पाताल गंगा की धार ऊपर निकाली थी और भीष्म की इच्छानुसार उनकी प्यास बुझाई थी। राणा सांगा के शरीर में 80 गहरे घाव लगे थे, फिर भी वे पीड़ा की परवाह न करते हुए अंतिम सांस रहने तक युद्ध में जूझते ही रहे थे। बड़े काम बड़े व्यक्तित्वों से ही बन पड़ते हैं। भारी वजन उठाने में हाथी जैसे सशक्त ही काम आते हैं। बकरों और गधों से उतना बन नहीं पड़ता, भले ही वे कल्पना करते मन ललचाते या डींगे हांकते रहें। प्रतिभा जिधर भी मुड़ती है उधर ही बुलडोजरों की तरह मैदान साफ करती चलती है। सर्वविदित है कि यूरोप का विश्वविजयी पहलवान सैंडो किशोर अवस्था तक अनेक बीमारियों से घिरा दुर्बल काया लिए फिरते थे, पर जब उन्होंने समर्थ तत्वावधान में स्वास्थ्य का नए सिरे से संचालन और बढ़ाना शुरू किया तो कुछ ही समय में विश्वविजयी स्तर के पहलवान बन गए। भारत के चंदगीराम पहलवान के बारे में अनेकों ने सुना है कि वह हिंद केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पहले वह अनियमित स्थिति में अध्यापिकी से रोटी कमाने वाले क्षीणकाय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मनोबल से ही नई रीति नीति अपनाई और खोई हुई सेहत नए सिरे से न केवल पाई वरन इतनी बड़ाई की हिंद केसरी उपाधि से विभूषित हुए। इंग्लैंड की एक महिला कैंसर रोग से बुरी तरह आक्रांत थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया कि अब 6 महीने से अधिक जीने की गुंजाइश नहीं है। जिस मशीन से उपचार हो सकता था वह करोड़ों मूल्य की थी जिसे अपने यहाँ रखने में कोई डॉक्टर समर्थ नहीं था। रोगी महिला ने नए सिरे से नया विचार किया। जब 6 महीने में मरना ही है तो अन्य अपने जैसे निरीहों के प्राण बचाने की कोशिश क्यों न करें। उसने टेलीविजन पर एक अपील की कि यदि 3 करोड़ रुपए का प्रबंध कोई उदारचेता कर सके तो उस मशीन के द्वारा उस जैसे निराशों को जीवन दान मिल सकता है। पैसा बरसा, उससे एक नहीं 3 मशीनें खरीद ली गई और इतना ही नहीं कैंसर का एक साधन संपन्न अस्पताल भी बन गया। रोगिणी इन्हीं कार्यों में इतने दक्षित और मस्त रही कि उसे अपने मरने की बात का स्मरण तक न रहा। कार्य पूरा हो जाने पर उसकी जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि कैंसर का एक भी चिन्ह उसके शरीर में बाकी नहीं रहा है। अस्पताल की चारपाई पर पड़े पड़े वाल्टेयर ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। कालिदास और वरदराज की मस्तिष्कीय क्षमता कितनी उपहासास्पद थी इसकी जानकारी सभी को है, पर वे जब नया उत्साह समेटकर नए सिरे से विद्या पढ़ने में जुटे तो मूर्धन्य विद्वानों में गिने जाने लगे। व्यक्ति की अंत चेतना, जिसे प्रतिभा भी कहते हैं, इतनी सबल है कि अनेकों अभावों और व्यवधानों को रौंदती हुई वह उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचने में समर्थ होती है। प्रतिभा वस्तुतः वह संपदा है जो व्यक्ति की मनस्विता, ओजस्विता, तेजस्विता के रूप में बहिरंग में प्रकट होती है। यदि प्रसुप्त को उभारा जा सके, स्वयं को खराद पर चढ़ाया जा सके, तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। यह अध्यात्म विज्ञान का एक सुनिश्चित सिद्धांत एवं अटल सत्य है। आगे बढ़ें और लक्ष्य तक पहुंचें। बिजली की शक्ति सामर्थ्य से सभी परिचित हैं। छोटे बड़े अनेकों यंत्र उपकरण उसी की शक्ति से चलते और महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करते हैं। मनुष्य शरीर में भी जीवनचर्या को सुसंचालित रखने में जैव विद्युत ही काम आती है। चेहरे पर चमक, स्फूर्ति और पुरुषार्थ कर दिखाना उसी के अनुदान है। मन में शौर्य, पराक्रम, साहस, विश्वास आदि के रूप में जब उसका अनुपात संतोषजनक मात्रा में होता है तो उसे प्रतिभा कहते हैं। वह अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जगाती है। कठिनाइयों से जूझ पड़ना और उन्हें परास्त कर सकना भी उसी का काम है। महत्वपूर्ण सृजन प्रयोजनों को कल्पना से आगे बढ़कर योजना तक और योजना को कार्यान्वित करते हुए सफलता की स्थिति तक पहुंचाने की सुनिश्चित क्षमता भी उसी प्रतिभा में है, जिसे अध्यात्म की भाषा में प्राणाग्नि एवं तेजस्वी मानसिकता कहते हैं। उपासना क्षेत्र में इसीलिए प्राणायाम जैसे यत्न सरलतापूर्वक किए जाते हैं। तपश्चर्या में तितिक्षा अपनाते हुए साधन सुविधा की आवश्यकता इसी अंत शक्ति के सहारे संपन्न कर ली जाती थी। शाप वरदान एवं असाधारण स्तर के चमत्कार दिखा सकना और कुछ नहीं मात्र प्राणाग्नि के ज्वलनशील होने से उत्पन्न हुई रिद्धि सिद्धि स्तर की क्षमता ही है। शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल तो कई लोगों में पाए जाते हैं, पर प्रतिभा के धनी कभी कहीं कठिनाई से ही खोजे पाए जा सकते हैं। दैत्य दुष्प्रयोजनों में और देव सत्प्रयोजनों में इसी उपलब्ध शक्ति का उपयोग करते हैं। समुद्र मंथन जैसे महापराक्रम इसी सामर्थ्य की पृष्ठभूमि से बन पड़े हैं। सत्संग से उत्थान और कुसंग से पतन की पृष्ठभूमि बनती है। यह और कुछ नहीं किसी समर्थ की प्रतिभा का भले बुरे स्तर का स्थानांतरण ही है। मानवीय विद्युत के अनेकानेक चमत्कारों की विवेचना करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि यह प्रतिभा नाम से जानी जाने वाली प्राण विद्युत ही अपने क्षेत्र में अपने ढंग से अपना काम कर रही है। जिसमें इसका अभाव होता है उसे काय, अकर्मणीय, डरपोक, आलसी एवं आत्महीनता की ग्रंथियों से ग्रसित माना जाता है। संकोची, परावलंबी एवं मन ही मन घुटते रहने वाले प्रायः इसी विशेषता से रहित पाए जाते हैं। सोचना, चाहना, कल्पना करना और इच्छा आकांक्षाओं का लबादा उड़े फिरने वालों में से कितने ही ऐसे भी होते हैं जो आकांक्षा अभिलाषा तो बड़ी बड़ी संजोए रहते हैं, पर उसके लिए जिस लगन, दृढ़ता, संकल्प एवं अनवरत प्रयत्न परायणता की आवश्यकता रहती है उसे वह जुटा ही नहीं पाते। फलत वे मन मारकर बैठे रहने और असफलताजन्य निराशा ही हाथ लगने तथा भाग्य को दोष देते रहने के अतिरिक्त मन को समझाने के लिए और कोई विकल्प खोज या अपना नहीं पाते। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, यह प्रतिपादन सही हो या गलत, पर इस मान्यता में संदेह करने की गुंजाइश नहीं कि प्रतिभा को आत्मसात करने के उपरांत सामान्य परिस्थितियों में जन्मा और पला मनुष्य भी परिस्थितिजन्य अवरोधों को नकारता हुआ प्रगति के पथ पर अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी बनता चला जाता है। फूल खिलते हैं तो उसके इर्द गिर्द मधुमक्खियां और तितलियां कहीं से भी आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगती हैं, भौरे उसका यशगान करने में न चूकते हैं, न से कुछ अतिरिक्त देवता फूल बरसाते और ईश्वर उसकी सहायता करने में कोताही नहीं करते। व्यक्तित्व का परिष्कार ही प्रतिभा परिष्कार है। धातुओं की खदानें जहां भी होती हैं, उस क्षेत्र के वही धातु कण मिट्टी में दबे होते हुए भी उसी दिशा में रेंगते और खदान के चुंबकीय आकर्षणों से आकर्षित होकर पूर्व संचित खदान का भार, कलेवर और गौरव बढ़ाने लगते हैं। व्यक्तित्ववान अनेकों का स्नेह, सहयोग, परामर्श एवं उपयोगी सान्निध्य प्राप्त करते चले जाते हैं। यह निजी पुरुषार्थ है। अन्य सुविधा साधन तो दूसरों की अनुकंपा भी उपलब्ध करा सकता है, किंतु प्रतिभा का परिष्कार करने में अपना संकल्प, अपना समय और अपना पुरुषार्थ ही काम आता है। इस पौरुष में कोताही न करने के लिए गीताकार ने अनेक प्रसंगों पर विचारशीलों को प्रोत्साहित किया है। एक स्थान पर कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और स्वयं ही अपना मित्र है, इसलिए अपने को उठाओ, गिराओ मत। पानी में बबूले अपने भीतर हवा भरने पर उभरते और उछलते हैं, पर जब उनका अंतर खोखला ही हो जाता है तो उनके विलीन होने में भी देर नहीं लगती। अंदर जीवट का बाहुल्य हो तो बाहर का लिफाफा आकर्षक या अनाकर्षक कैसा भी हो सकता है, किंतु यदि ढकोसले को ही सब कुछ मान लिया जाए और भीतर ढोल में पोल भरी हो तो ढमढम की गर्जन तर्जन के सिवाय और कुछ प्रयोजन सिद्धता नहीं। पृथ्वी मोटी दृष्टि से जहां की तहां स्थिर रहती प्रतीत होती है, पर उसकी गतिशीलता और गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस तेजी से दौड़ लगाती है कि एक वर्ष में सूर्य की लंबी कक्षा में परिभ्रमण कर लेती है और साथ ही हर रोज अपनी धुरी पर भी लट्टू की तरह घूम जाती है। कितने ही व्यक्ति दिनचर्या की दृष्टि से एक धर्रा ही पूरा करते हैं, किंतु भीतर वाली चेतना जब तेजी से गति पकड़ती है तो वे सामान्य परिस्थितियों में गुजर करते हुए भी उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचते हैं। सामर्थ्य भीतर ही रहती, बढ़ती और चमत्कार दिखाती है। उसी को निखारने, उजागर करने पर तत्परता बरती जाए तो व्यक्तित्व की प्रखरता इतनी सटीक होती है कि जहां भी निशाना लगता है वहीं से आर पार निकल जाता है। उन दिनों जर्मनी मित्र राष्ट्रों के साथ पूरी शक्ति झोंककर लड़ रहा था। इंग्लैंड के साथ रूस और अमेरिका भी थे। वे बड़ी मार से अचकचाने लगे और हरजाना देकर पीछा छुड़ाने की बात सोचने लगे। बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के सामने आई तो उन्होंने त्योरी बदलकर कहा, आप लोग जैसा चाहे सोच या कर सकते हैं, पर इंग्लैंड कभी हारने वाला नहीं है। वह आप दोनों के बिना भी अपनी लड़ाई आप लड़ लेगा और जीत कर दिखा देगा। इस प्रचंड आत्मविश्वास को देखकर दोनों साथी भी ठिठक गए और लड़ाई छोड़ भागने से रुक गए। डार्विन के कथनानुसार बंदर की औलाद बताया गया मनुष्य आज इसी कारण सृष्टि का मुकुटमणि बन चुका है और धरती या समुद्र पर ही नहीं, अंतरिक्ष पर भी अपना आधिपत्य जमा रहा है। कभी के समर्थ देवता चंद्रमा को उसने अपने पैरों तले बैठने के लिए विवश कर दिया है। लकड़ी का लट्ठा पानी में तभी तक डूबा रहता है जब तक कि उसकी पीठ पर भारी पत्थर बंधा हो। यदि उस वजन को उतार दिया जाए तो छुटकारा पाते ही नदी की लहरों पर तैरने लगता है और भंवरों को पार करते हुए दंदनाता हुआ आगे बढ़ता है। राख की मोटी परत चढ़ जाने पर जलता हुआ अंगारा भी नगण्य मालूम पड़ता है, पर परत हटते ही वह अपनी जाज्वल्यमान ऊर्जा का परिचय देने लगता है। वस्तुतः मनुष्य अपने सृजेता की तरह ही सामर्थ्यवान है। लकड़ियों को घिसकर आग पैदा कर लेने वाला मनुष्य अपने अंदर विद्यमान सशक्त प्रतिभा को अपने बलबूते बिना किसी का एहसान लिए प्रकट न कर सके, ऐसी कोई बात नहीं। आवश्यकता केवल प्रबल इच्छा शक्ति एवं उत्कंठा की है। उसकी कमी न पड़ने दी जाए तो मनुष्य अपनी उस क्षमता को प्रकट कर सकता है जो न तो देवताओं से कम है और न दानवों से। जब वह घिनौने कार्य पर उतरता है तो प्रेत पिशाचों से भी भयंकर दिखता है। जब वह अपनी श्रेष्ठता को उभारने, कार्यान्वित करने में जुट जाता है तो देवता भी उसे नमन करते हैं। मनुष्य ही है जिसके कलेवर में बार बार भगवान अवतार धारण करते हैं। मनुष्य ही है जिसकी अभ्यर्थना पाने के लिए देवता लालायित रहते हैं और वैसा कुछ मिल जाने पर वरदानों से उसे निहाल करते हैं। स्वर्ग की देवियां रिद्धि सिद्धियों के रूप में उसके आगे पीछे फिरती हैं और आज्ञानुवर्ती बनकर मिले हुए आदेशों का पालन करती हैं। यह भूलोक सौरमंडल के समस्त ग्रह गोलकों से अधिक जीवंत, सुसंपन्न और शोभायमान माना जाता है, पर भुलाया यह भी नहीं जा सकता कि आदिकाल के इस अंगड़ उबड़ खाबड़ धरातल को आज जैसी सुसज्जित स्थिति तक पहुंचाने का श्रेय केवल मानवीय पुरुषार्थ को ही है। वह अनेक जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का पालन करता और आश्रयदाता है। फिर कोई कारण नहीं कि अपनी प्रस्तुत समर्थता को जगाने उभारने के लिए यदि समुचित रूप से कटिबद्ध हो चले तो उस प्रतिभा का धनी न बन सके जिसकी यश गाथा गाने में लेखनी और वाणी को हार माननी पड़ती है। मनुष्य प्रभावशाली तो है, पर साथ ही वह संबद्ध वातावरण से प्रभाव भी ग्रहण करता है। दुर्गंधित सांस लेने से सिर चकराने लगता है और सुगंधि का प्रभाव शांति, प्रसन्नता और प्रफुल्लता प्रदान करता है। बुरे लोगों के बीच, बुराई से संचालित घटनाओं के मध्य समय गुजारने वाले, उनमें रुचि लेने वाला व्यक्ति क्रमशः पतन और पराभव के गर्त में ही गिरता जाता है। साथ ही यह भी सही है कि मनीषियों, चरित्रवानों, सत्साहसी लोगों के संपर्क में रहने पर उनका प्रभाव अनुदान सहज ही खींचता चला आता है और व्यक्ति को उठाने गिराने में असाधारण सहायता करता है। इन दिनों व्यक्ति और समाज में हीनता और निकृष्टता का ही बाहुल्य है। जहां इस प्रकार का वातावरण बहुलता लिए हो उससे यथासंभव बचना और असहयोग करना ही उचित है। सज्जनता का सान्निध्य कठिन तो है और सत्प्रवृत्तियों की भी अपनी समर्थता जहां तहां ही दिखाई देती है। ऐसी दशा में पुरातन अथवा अर्वाचीन सदाशयता का परिचय पुस्तकों के प्रसंगों के समाचारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और उन संस्मरणों को आत्मसात करते हुए ऐसा अनुभव किया जा सकता है मानो देवलोक के नंदनवन में विचरण किया जा रहा है। इस संबंध में स्वाध्याय और सत्संग का सहारा लिया जा सकता है। इतिहास में से वे पृष्ठ ढूंढे जा सकते हैं जो स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए हैं और मानवीय गरिमा को महिमामंडित करते हैं। आत्मविश्वास बड़ी चीज है। वह रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना सकने में समर्थ है। दूसरे लोगों का साथ न मिले यह हो सकता है, किंतु अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को मनमर्जी के अनुरूप सुधारा उभारा जा सकता है। संकल्प शक्ति की विवेचना करने वाले कहते हैं कि वह चट्टान को भी चटका देती है, कठोर को भी नर्म बना देती है और उन साधनों को खींच बुलाती है जिनकी आशा अभिलाषा में जहां तहां प्यासे कस्तूरी हिरण की तरह मारा मारा फिरना पड़ता है। मनुष्य यदि उतारू हो जाए तो दुष्कर्म भी कर गुजरता है, आत्महत्या तक के लिए उपाय अपना लेता है, फिर कोई कारण नहीं कि उत्थान का अभिलाषी अभीष्ट अभ्युदय के लिए सरंजाम न जुटा सके। दूसरों पर विश्वास करके उन्हें मित्र सहयोगी बनाया जा सकता है। श्रद्धा के सहारे पाषाण प्रतिमा में देवता प्रकट होते देखे गए हैं, फिर कोई कारण नहीं कि अपनी श्रेष्ठता को समझा उभारा और संजोया जा सके, तो व्यक्ति ऐसी समुन्नत स्थिति तक न पहुंच सके जिस तक जा पहुंचने वाले हर स्तर की सफलता अर्जित करके दिखाते हैं। आत्मनिरीक्षण को सतर्कतापूर्वक संजोया जाता रहे तो वे खोटे भी दृष्टिगोचर होती हैं, जो आमतौर से छिपी रहती हैं और सूझ नहीं पड़ती, किंतु जिस प्रकार दूसरों का छिद्रान्वेषण करने में अभिरुचि रहती है, वैसी ही अपने दोष दुर्गुणों को बारीकी से खोजा और उन्हें निरस्त करने के लिए समुचित साहस दिखाया जाए तो कोई कारण नहीं कि उनसे छुटकारा पाने के उपरांत अपने को समुचित और सुसंस्कृत न बनाया जा सके। इसी प्रकार औरों की अपेक्षा अपने में जो विशिष्टताएं दिख पड़ती हैं, उन्हें सींचने संभालने में उत्साहपूर्वक निरत रहा जाए तो कोई कारण नहीं कि व्यक्तित्व अधिक प्रगतिशील अधिक प्रतिभासंपन्न न बनने की दशा अपनाई जा सके। इस संदर्भ में सबसे बड़ा सुयोग इन दिनों है जबकि नव सृजन के लिए प्रचंड वातावरण बन रहा है, उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में नियंता का सारा ध्यान और प्रयास नियोजित है। ऐसे में हम भी उसके सहभागी बनकर अन्य सत्परिणामों के साथ ही प्रतिभा परिष्कार का लाभ हाथों हाथ नकद धर्म की तरह प्राप्त होता हुआ सुनिश्चित रूप से अनुभव करेंगे। सृजन शिल्पियों के समुदाय को अग्रगामी बनाने में लगी हुई केंद्रीय शक्ति अपने और दूसरों के अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह विश्वास दिलाती है कि यह पारस से सटने का समय है, कल्पवृक्ष की छाया में बैठ सकने का अवसर है। प्रभात पर्व में जागरूकता का परिचय देकर हम में से हर किसी को प्रसन्नता प्रफुल्लता और सफलता की उपलब्धियों का भरपूर लाभ मिल सकता है, साथ ही परिष्कृत प्रतिभायुक्त व्यक्तित्व संजोने का भी। प्रस्तुत पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध है। प्रकाशक Asterisk 1988-90 तक लिखी पुस्तकें क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला पूजीरो गुरुदेव के जीवन का सार हैं, सारे जीवन का लेखा जोखा हैं। 1940 से अब तक के साहित्य का सार हैं। इन्हें लागत मूल्य पर छपवाकर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है, कोई कॉपीराइट नहीं है, प्रयुक्त आंकड़े उस समय के अनुसार है, इन्हें वर्तमान के अनुरूप संशोधित कर लेना चाहिए। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण से पहले मार्च 1984 में लोकसेवी कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। यह मनोभाव हमारी तीन उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम कागज या उंगलियां ही पूरा करेगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है, कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा है वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम समय साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुप जाएं, तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है, उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहां से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचे कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन योग्यता शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राय रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें। लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचे, अहनिश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है, इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, तब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाये और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। पम 0 श्रीराम शर्मा आचार्य, मार्च 1984। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। युग निर्माण का सत्संकल्प नित्य दोहराना चाहिए। स्वाध्याय से पहले इसे एक बार भावना पूर्वक पढ़ना और तब स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए। सत्संगों और विचार गोष्ठियों में इसे पढ़ा और दोहराया जाना चाहिए। इस सत्संकल्प का पढ़ा जाना हमारे नित्य नियमों का एक अंग रहना चाहिए तथा सोते समय इसी आधार पर आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाना चाहिए। 1. हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 7. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 8. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो युग अवश्य बदलेगा। 18. हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।